2 नवंबर दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। रूसी एयरलाइंस का कहना है कि विमान की दुर्घटना का कारण बाहरी। बिहार में पांचवें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा।
बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त विमान की कंपनी मेट्रोजेट ने कहा है कि हादसे के पीछे कोई बाहरी वजह हो सकती है। हालांकि विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा की जांच कर रहे हवाई विशेषज्ञ अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेट्रोजेट एयरलाइन के डिप्टी निदेशक अलेक्जेंडर स्मिरनोव ने तकनीकी गड़बड़ी या पायलट की गलती की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में गड़बड़ियों को ऐसा कोई मेल नहीं हो सकता जिससे विमान हवा में ही बिखर जाए। तुर्की में रविवार को हुए चुनाव की प्रक्रिया की रिपोर्टिंग में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय चुनाव पर्यवेक्षकों ने तुर्की की सरकार की आलोचना की है। ओएससीई के चुनाव पर्यवेक्षक दल के अध्यक्ष इग्नासियो सांचेस अमोर ने कहा कि तुर्की के लोगों के लिए चुनाव में वास्तविक विकल्प थे, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण के कारण लोगों को अलग अलग विचारों से रूबरू होने का मौका नहीं मिला। तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी एकेपी पार्टी की जीत को राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगान की व्यक्तिगत जीत के रूप में देखा जा रहा है, ओएससी के चुनाव पर्यवेक्षक दल के अध्यक्ष इग्नासियो सांचेस अमोर ने कहा। तुर्की में मीडिया पर काफी दबाव है। पत्रकारों और मीडिया केंद्रों पर चरमपंथ का समर्थन करने और राष्ट्रपति एर्दोगान के मानहानि के आपराधिक मामलों का गहरा असर देखा गया है। ये थे इग्नासियो सांचेस अमोर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नेपाल के बिरगुनी शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस का कहना है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जब हमला कर दिया तो पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। नेपाल के दक्षिण तराई इलाके में मधेसी आंदोलनकारियों के नेपाल भारत सीमा को बंद करने से नेपाल में भारत से जाने वाली जरूरी सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। मधेसी लोग नए संविधान में अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। इसराइल की पुलिस ने कहा है कि इसराइल और पश्चिमी तट के बीच चाकू से हमला करने जा रहे एक फलस्तीनी युवक को गोली मार दी गई है। पिछले कुछ हफ्तों से इसराइल में इस तरह की हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसराइल ने इन घटनाओं के लिए फलस्तीनी नेताओं के उकसावे को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन फलस्तीनी लोग इन हमलों के पीछे पिछले 50 साल से इसराइल के सैन्य कब्जे के खिलाफ पनप रहा गुस्सा बता रहे हैं। यमन के सोकोत्रो द्वीप में आए तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण ऊंची लहरें उठी जिससे रिहायशी इलाके में रह रहे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। तूफान के अब यमन के मुकल्ला पहुंचने की संभावना है। गृह युद्ध से ग्रस्त यमन के मुकल्ला में अलकायदा और स्थानीय कबायली काउंसिल का कब्जा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शनिवार को मिस्र में जिस रूसी एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना हुई थी उसके एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह दुर्घटना किसी तकनीकी दिक्कत या पायलट की गलती से नहीं हुई बल्कि इसका कोई बाहरी कारण रहा है। उधर इस विमान के गिरने से मारे गए 224 लोगों में से 140 से अधिक के शव रूस ले जाए गए हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
सेंट पीटर्सबर्ग के हवाई अड्डे में लोग फूल लेकर इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने जुट रहे हैं।
Что можно сказать, большая трагедия для всех стран. Слёз не сдержать, детей жалко.
Наталья нам की ये महिला रोते हुए बता रही हैं, अब क्या कहा जा सकता है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सारे ही देशों को इससे सदमा लगा है, आंसू रुक ही नहीं रहे। तातियाना नाम की ये महिला कह रही हैं कि ये बेहद दुखद है। जो लोग, जो बच्चे फ्लाइट में थे, उनके बारे में सोच कर भी दिल टूट जाता है। मेरा भी एक बच्चा है और मैं भी अक्सर उसके साथ हवाई यात्रा करती हूँ। ये थे तातियाना नाम की एक महिला के शब्द। इस दुर्घटना में मारे गए 160 से अधिक लोगों के शव रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में लाए जा रहे हैं। दुर्घटना में विमान में सवार सभी 220 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद रविवार को रूस में राष्ट्रीय शोक का दिन रहा। ये विमान मेट्रोजेट नाम की जिस एयरलाइंस का था, उसके उपनिदेशक अलेक्जेंडर सिमरनोव ने मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि ये विमान हादसा किसी बाहरी कारण के चलते ही हुआ है। उन्होंने विमान में किसी भी तकनीकी खराबी से इनकार किया है। कोई भी विमान हवा के बीचों बीच किसी फेलियर के चलते नहीं तबाह हो सकता। अगर हम सिद्धांतों पर ध्यान दें तो तकनीकी रूप से एक विमान हाई जी इफेक्ट के चलते ही टूट सकता है। एयरबस A320 एक भरोसेमंद एयरप्लेन है। इसकी कंट्रोल सिस्टम में सुरक्षा के जो इंतजाम हैं, उसके चलते प्लेन हाई जी इफेक्ट तक जा ही नहीं सकता। यहाँ तक कि तब भी नहीं जबकि पायलट की विमान चलाने की तकनीक में भी दिक्कत हो। इसलिए इस दुर्घटना का केवल एक ही कारण हो सकता है कि विमान पर बाहर की किसी चीज से असर हुआ हो। ये थे मेट्रोजेट के उपनिदेशक अलेक्जेंडर सिमरनोव के शब्द। इस हादसे के बाद इस्लामी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्होंने ही इस विमान को गिराया था। अपने दावे की पुष्टि के लिए आईएस ने कोई तस्वीर या वीडियो पेश नहीं किया था। उधर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा है कि जब तक जांचकर्ता इस हादसे के असल कारणों का पता नहीं लगा लेते, तब तक सभी को सब्र बनाए रखना चाहिए। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी इंस्पेक्टर रहे डेविड सॉसी कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि विमान को किसी मिसाइल से दागा गया हो। जिस बात की पड़ताल की जा रही होगी, उनमें से एक बात यह है कि अगर ये किसी मिसाइल का हमला था तो एयरक्राफ्ट की बॉडी में भी कोई सबूत दिखने चाहिए। बाद में ली गई कुछ तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता है। एयरक्राफ्ट का बाहरी हिस्सा उस तरह नहीं टूटा है जिस तरह MH-17 के हमले से टूटता है। ये थे डेविड सॉसी के शब्द। उधर टेलीविजन में प्रसारित अधिकारियों के साथ एक बैठक में रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेडवेडेव ने कहा है कि रूसी एविएशन विशेषज्ञ विमान की दुर्घटनाओं के कारण का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेंगे।
मिस्र में दुर्घटनाग्रस्त विमान के 160 शव रूस ले जाए गए। और अब रुख करते हैं भारत का। बिहार में विधानसभा चुनाव के पांचवें दौर का चुनाव प्रचार निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 5 नवंबर को राज्य के 9 जिलों में चुनाव होने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई चुनाव सभाओं को संबोधित किया है। राहुल गांधी और लालू प्रसाद ने भी राज्य में कई चुनाव रैलियां की हैं। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
उत्तर बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के जिलों में अंतिम चरण के मतदान के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य में अंतिम चुनावी दौरा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 3-3 चुनावी सभाएं की, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अलग अलग जगहों पर सभा कर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। यूपीए और एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा बन चुके बिहार के इस चुनाव में दोनों गठबंधनों के नेताओं में सभा करने को लेकर होड़ सी मची है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान लगभग 30 सभाएं की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 200 से भी अधिक सभाएं अब तक की हैं। प्रधानमंत्री ने आज के चुनावी दौरे में 84 के दंगों का जिक्र कर कांग्रेस की खिंचाई की और आरक्षण पर अपना पक्ष रखा।
संप्रदाय के आधार पर दूसरे संप्रदाय को देने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। बिहार के महादलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर युवाओं की हकमारी करने का इल्जाम लगाया।
बिहार का युवा हमारी अच्छी पिटाई करने वाला है। तो पहले इनके नेता आते थे, कहते थे विकास हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, 60 साल के लिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। दो तीन भाषण दिए, मोदी जी हेलीकॉप्टर में है, उन्होंने हाईवे देखी, रेलवे लाइन देखी और गांव में सड़क देखी और कहा कि भाई ये हमारा भाषण तो नहीं चलेगा, भाषण बदल दिया।
जबकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने गवई अंदाज में पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोपों के तीर छोड़े।
सीरिया के सामने नहीं लाना चाहता, ये अपने बोलेगा पी आज जितना जवान लड़का सब है तुम लोगों को ठेंगा दिखाया नरेंद्र मोदी, आज जितना के ब्याह हुआ है आज घर में कन्या है तो कन्या के छोड़ कर अकेले वोट देने मत जाना, कन्या को लेकर चला
निर्णायक दौर में पहुंच चुके बिहार विधानसभा के इस चुनाव में लगातार हो रहे चुनावी सभाओं के कारण वोटों का ध्रुवीकरण किस गठबंधन के पक्ष में हुआ है यह आने वाला समय ही बताएगा। नीरज सहाय, BBC, पटना।
लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन चिराग पासवान का कहना है कि चुनाव के बाद अगर जीतन राम मांझी को महत्वपूर्ण पद मिलता है तो उनकी पार्टी उसका स्वागत करेगी। BBC संवाददाता पंकज प्रियदर्शी ने चिराग पासवान से पटना में मुलाकात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या सीट बंटवारे की 30 अब भी बरकरार है।
नहीं नहीं, देखिए 30 उस वक्त भी नहीं थी, उस वक्त भी मैंने इस बात को क्लियरली कहा था कि मैं नाराज नहीं हूँ बट हैरान जरूर हूँ। मुझे कोई नाराजगी नहीं है कि सीटें हम लोगों को कितनी दी नहीं दी, बट मैं हैरान जरूर था क्योंकि बंद कमरे में हम लोगों की एक बातचीत हुई थी और बंद कमरे में जो हम लोगों को एक संख्या बताई गई थी और जो संख्या सार्वजनिक तौर पर बोली गई उन दोनों में अंतर था। उन दोनों
का अंतर था बताएंगे।
देखिए ये मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि मैं अंदर की बातों को ज्यादा सार्वजनिक नहीं करूं, बट हाँ कोई इतना बड़ा अंतर नहीं था, इतना बड़ा फासला नहीं था कि जिसकी 30 अभी तक अंदर हो, ऐसा कुछ नहीं है।
कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के गठबंधन को प्राथमिकता दिए जाने से थोड़ी सी निराशा थी आप लोगों को।
नहीं बिल्कुल नहीं, और इस बात को मैं बहुत ईमानदारी से मैं बोलूंगा, बहुत ईमानदारी से मैं इस बात को कबूल करूंगा। पता नहीं है क्यों इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है या कहा जा रहा है। मांझी जी हम लोग के लिए परिवार के सदस्य के समान है, मांझी जी के साथ हमारे पिताजी के बहुत लंबे समय से संबंध रहे हैं, तो मांझी जी का आना बल्कि हमारे गठबंधन को इससे और मजबूती मिली है।
लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस वर्ग को आप और आपके पिताजी रिप्रेजेंट करते हैं उस वर्ग में कोई एक और बड़ा चेहरा आता है तो थोड़ी क्या चिंता बढ़ती है या खतरा महसूस होता है?
ईमानदारी से बोलूंगा, मेरे पिताजी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी का 40 साल का राजनीतिक अनुभव रहा, साल दर साल और संभवतः हर एक चुनाव में इनका कंपैरिजन किसी ना किसी और नेता से रहा ही है। कभी काशीराम जी से रहा, कभी मायावती जी से रहा, इवन डाउन साउथ में इनका करुणानिधि जी से इनका कंपैरिजन होता रहा। नेता आते रहे जाते रहे बट ईमानदारी की बात है 40 साल का इनका अपना राजनीतिक अनुभव, 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव, 2-2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाइएस्ट मार्जिन से जीत दर्ज कराने का अनुभव, ये अपने में एक इंस्टीट्यूशन है। मुझे नहीं लगता कि किसी के आने से या किसी के साथ कंपेयर होने से इनकी अपनी प्रतिभा पे हल्का सा भी कोई अंकुश पड़ता है या हल्की सी भी कोई इश्यू उसमें खड़ा होता।
अगर चुनाव के बाद जीतन राम मांझी को कोई महत्वपूर्ण पद मिलता है तो आप लोग इससे संतुष्ट रहेंगे?
बिल्कुल, हम लोग बल्कि इसका स्वागत करेंगे। देखिए मांझी जी ने प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो हमारे प्रदेश के।
लेकिन बीच में कुछ मतभेद तो थे क्योंकि बयानबाजी भी हुई थी, मांझी जी ने कुछ आपके अध्यक्ष जी के बारे में बोला।
जब आप चाइनीज रिस्पर शुरू होता है तो एक्चुअल तथ्य क्या होता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, तो किन परिपेक्ष में मांझी जी ने वो बातें बोली, किस परिपेक्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बातें बोली, जब तो परिपेक्ष ही पूरी तरीके से पता नहीं हो उस पर वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। जब दोनों नेता आपस में मिले, दोनों ने बैठकर आपस में इस बात को सुलझा लिया, तो ये उस वक्त भी हमारे लिए कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, आज की तारीख में भी इतना बड़ा इशू नहीं है।
लेकिन कहा यह जा रहा है कि NDA में और सहयोगी दलों में सबसे खराब पिच पर आपकी पार्टी खेल रही है।
देखिए इस बात को तो मैं बिल्कुल भी कबूल नहीं करूंगा। बहरहाल वाद विवाद में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, अभी चंद दिन रह गए, रिजल्ट सामने रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी को हमेशा अंडर एस्टिमेट करके देखा गया है। मेरी बुद्धि, मेरा विवेक और मेरा विश्वास ये कहता है कि हम लोग आज की तारीख में 42 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 35 सीटें हम लोग उसमें से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है।
पार्टी की बात करें तो मैं पटना में घूम रहा था, शहर में कई पोस्टर नजर आए और आपका कद पोस्टर में सबसे ऊंचा नजर आया।
अब इस पे देखिए, पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। पोस्टर में, होर्डिंग्स में मेरी तस्वीर का बड़ा या छोटा होने मायने नहीं रखता, बट हाउस में जो हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं जनता को, वो जनता तक पहुंच रहा है, इस बात की खुशी है।
बिहार में दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है?
देखिए, दलितों का नेता मुझे लगता है, अब पता नहीं मैं पार्शल होके बोलूंगा या बोलेंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, बट हकीकत में आप दलितों का नेता माने या मेरा नेता माने, मेरे लिए नेता वर्ड शुरू और समाप्त मेरे पिताजी के नाम से होता है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वही मेरे नेता है।
क्या चिराग पासवान मौका पड़ने पर बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है?
अब इसको प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में कब नेतृत्व करूंगा बिहार का, नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता, बट अपनी क्षमता
बोलूं तो मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार हैं आप?
देखिए, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत अनुभव की जरूरत होती है, मुझे लगता है कि फिलहाल मैं अप्रत्यक्ष रूप से ही।
आपका पड़ोसी राज्य तो है, वहाँ पे भी अखिलेश यादव सीधे मुख्यमंत्री ही बने।
देखिए, फिलहाल तो हम लोग जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें हमारे नेता ने और हमारी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं होगा।
चिराग पासवान से बात कर रहे थे पंकज प्रियदर्शी, ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। नेपाल में पुलिस ने भारत से लगी सीमा पर नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की है। पीरगंज में पुलिस द्वारा चलाई गोली में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। आज भी भारत की ओर से आवश्यक सामग्री से भरा कोई भारतीय ट्रक नेपाल की सीमा में नहीं घुस सका। मैंने थोड़ी देर पहले जनकपुर फोन कर स्थानीय पत्रकार ब्रजकुमार यादव से ताजा हालात के बारे में पूछा।
ऐसा है, जो बीरगंज में आज सवेरे से तनाव की स्थिति है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें एक भारतीय नागरिक का मृत्यु हो गया है, जिसको पुलिस अधिकारी ने पुष्टि कर चुका है, और स्थिति वहाँ अभी भी तनावपूर्ण है। कर्फ्यू लगा हुआ है दिन के 3 बजे से, लेकिन कर्फ्यू में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रही है और पुलिस फायर कर रहे हैं, टीयर गैस चला रहे हैं, फिर भी स्थिति कंट्रोल से बाहर है। बहुत सारे लोग सड़क पे हैं और प्रदर्शन हो रहा है।
ये बताइए, वो जो ट्रक वापस आने थे नेपाल से भारत, वो क्या आ पाए हैं वापस, खाली ट्रक?
जी हाँ, मुझे जैसे यहाँ के अधिकारियों से बात हुई है, उन लोगों ने बताया जो 239 गाड़ी जो खाली नेपाल में बीरगंज में करीबन 3 महीना से रुके हुए था, वो तो सारे का सारे गाड़ी भारत चला गया है।
और भारत से जो गाड़ियां जा रही थी सामान लेकर वहां पहुंचने वाली थी, उनका क्या हुआ है?
भारत से एक भी गाड़ी नेपाल नहीं आ सकी है, इसलिए जो आंदोलनकारियों ने जो पुल से, पुलिस ने आंदोलनकारियों को जो खदेड़ा था, हटाया था जिस पुल से, उस पुल पे वो लोग तुरंत आके फिर से बैठ गया और भारत से जो गाड़ी नेपाल आने वाली थी वो नहीं आ पाई।
तो इसकी वजह से जो आम नागरिक हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?
नेपाल में करीबन आज 80 दिन हो गया जो तराई के जिले में आम हड़ताल है, नाका सब जो भंसार नाका सब है वो सब बंद है। इस वजह से नेपाल में बहुत सारे जरूरत की सामान नहीं आ पा रहा है और लोग काफी दिक्कत में है।
तो आपको लगता है ये गतिरोध कुछ टूटेगा, कुछ स्थिति बेहतर होने की कुछ संभावना दिखाई दे रही है?
वैसे सरकार और ये आंदोलनकारी के बीच में वार्ता चल रहा है, कल बढ़िया वार्ता हुआ था, लेकिन आज ये घटना होने के बाद ये मधेसी मोर्चा वालों ने कहा है, जो हम लोग के साथ सरकार सकारात्मक रूप से नहीं आ रहे हैं, हम लोग की मांग को सुनवाई नहीं कर रहे हैं और उल्टे कार्रवाई कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं जिससे लोगों को जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं, तो हम लोग ऐसी स्थिति में वार्ता भी नहीं करेंगे, वार्ता भंग कर देंगे। तो लगता ही है जो स्थिति और खराब होने का संभावना है।
ये थे जनकपुर से स्थानीय पत्रकार ब्रज कुमार यादव। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम बीरगंज में हुई फायरिंग से चिंतित हैं, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके राजनीतिक कारण हैं और उसका बल प्रयोग से समाधान नहीं निकाला जा सकता है। और अब एक दूसरा विषय, भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले वर्ष सेना ने चरमपंथियों का संदेह होने पर एक कार पर फायरिंग की थी जिसमें 2 छात्र मारे गए थे। इस घटना के बाद सेना ने 9 सैनिकों को दोषी तो ठहराया था लेकिन 1 वर्ष बाद भी मारे गए युवकों के पीड़ित परिवार न्याय के इंतजार में हैं। शनिवार को नरेंद्र मोदी श्रीनगर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
पिछले वर्ष 3 नवंबर को श्रीनगर के निकटतम इलाके नौगाम में एक चेकपॉइंट पर 2 युवकों बुरहान और महराज पर सेना ने गोली चलाई। सेना ने कहा कि ये पहचान की गलती थी, तहम साथ ही इस गलती के आरोप में एक अफसर समेत 9 सैनिकों को दोषी जताकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश कर दी गई। इस घटना को अब 1 वर्ष पूरा हो रहा है लेकिन आज भी जम्मू में तैनात सेना की उत्तरी कमान के अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में वो केंद्रीय कमान से विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे समय जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कश्मीर आ रहे हैं, मारे गए युवकों के परिवारजनों का कहना है कि इनके साथ मोदी सरकार और राज्य सरकार ने विश्वासघात किया है। बुरहान की पहली बरसी पर इनकी बहन कहती हैं कि इन्हें रुपया पैसा या नौकरी नहीं बल्कि न्याय चाहिए।
जो हमारा भाई जो शहीद हुआ था महराज, तो इन्होंने आर्मी ने जो हमारे साथ कंपनसेशन किया था 10 लाख रुपए, लेकिन हमने वो भी रिजेक्ट किया। आज तक हमें कोई हेल्प नहीं मिला इनकी तरफ से। इन्होंने बोला था जॉब के लिए या फिर पैसे देने के लिए, लेकिन हमने वो भी रिजेक्ट किया। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो हम चाहते हैं तो हमें इंसाफ चाहिए।
इस घटना में मारे गए एक और युवक मेराज दीन के पिता गुलाम मोहम्मद डार का कहना है कि कोर्ट मार्शल की सिर्फ घोषणा की जाती है और असल में कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि इस घटना के बाद इन्हें पुलिस, सेना या सरकार ने पूछा तक नहीं।
जब ये केस लट गया वो अखबार में निकाला, हमारे 9 आदमी निकाला इसमें, ये मुलजिम है, इनको कोर्ट मार्शल, मगर हमको पता नहीं वो किधर है, वो 9 आदमी कौन सा है, कहाँ है, दिखाया कभी नहीं दिखाया, वो घर में है, ड्यूटी पर है, कहाँ है ये पता नहीं है हमको न। किसी ने फौजी के पास गया, एक दफ़ा हमने सोचा इनके साथ मिलेगा, मगर गेट तक नहीं खोला, गेट के अंदर नहीं छोड़ा हमको। इसका ना पत्थर हाथ में है ना बंदूक हाथ में है, अगर मिल्टन निकल गया तो वो कोई बात नहीं, मगर ये बेचारा पढ़ रहा है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारा भरोसा सब उठ गया, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी और इधर उधर गवर्नमेंट के पास, वो सारा भरोसा हमको उठ गया।
गौरतलब है कि इस घटना की वजह से घाटी में कई दिनों तक प्रदर्शन होते रहे। इस घटना के तुरंत बाद सैनिक अधिकारियों ने दोष स्वीकारते हुए नौगाम में तैनात सेना की उस यूनिट को हटा दिया था और मारे गए युवकों के परिवार वालों को नकद मुआवजा भी पेश किया था, लेकिन दुखी परिवार वालों ने मुआवजा नकारते हुए न्याय की मांग की थी। ऐसी घोषणाएं कश्मीर में अक्सर होती हैं। लोगों का इन पर इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि न्याय की प्रक्रिया गुप्त होती है और लोगों को न्याय मिलने का एहसास ही नहीं होता। इस वर्ष जुलाई में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट जारी की है इसके मुताबिक ऐसी घटनाओं में न्याय न मिलने का असली कारण आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाम का कानून है, जिसके अंतर्गत गलती से मारे गए लोगों के लिए सेना या अर्धसैनिक बलों का प्रोसिक्यूशन किसी सिविल अदालत में नहीं हो सकता। एमनेस्टी रिपोर्ट में बताया गया कि 25 वर्ष में 1500 से अधिक शिकायतों में सेना की ज्यादतियों का जिक्र है, लेकिन इनमें से सिर्फ 54 को सही मानकर 129 सैनिकों के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया गया। इस बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा के सिलसिले में अधिकतम सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अलगाववादी नेताओं और इनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश प्रियदर्शी और स्वाति बख्शी।
श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूँ स्वाति बख्शी और आज मेरे साथ हैं राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार
राजेश जी। मैं पहले पोस्ट कार्ड उठा रही हूँ और आज लग रहा है कि मुझसे कुछ ज़्यादा ही शिकायतें हैं। पहली चिट्ठी जो है वो लिखी है श्रीराम प्रजापत ने बागोड़ा से। इनकी हैंडराइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ पा रही है, लेकिन इन्होंने जो शिकायत की है वो मुझे बिल्कुल साफ समझ में आई। लिखते हैं कि सभी उद्घोषकों को मेरी तरफ से राम राम खम्मा घणी। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चिट्ठी को पूरा पढ़ें, आधी अधूरी ना पढ़ें, क्योंकि मेरी चिट्ठी 22 तारीख को स्वाति बख्शी ने पढ़ी, वो पूरी नहीं पढ़ी थी। मैंने सभी उद्घोषकों को राम राम कहा था, उन्होंने वो नहीं पढ़ा। मैंने सबके नाम लिखे थे, वो भी नहीं पढ़े, और इससे मुझे बहुत नाराजगी हुई है। आइंदा ऐसा ना करें।
राम राम प्रजापत जी और सभी श्रोताओं को प्रजापत जी की राम राम। मेरे ख्याल से अब इनको संतुष्टि हो गई होगी। देखिए दिक्कत यही है कि ज़्यादा चिट्ठियाँ लेने की कोशिश जब हम करते हैं तो ज़ाहिर है कि हम पूरी की पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ सकते, और अगर हम कोई चिट्ठी पूरी की पूरी पढ़ें तो ज़्यादा शिकायतें इस बात की आती हैं कि आपने एक ही व्यक्ति को सब समय दे दिया और उस वजह से हमारी चिट्ठी शामिल नहीं हो पाई। तो ये एक संतुलन है जो स्वाति को हर हफ्ते करना पड़ता है, तो इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपकी पूरी चिट्ठी कई बार नहीं पढ़ी जा पाती है, लेकिन उसकी वजह यही है।
दूसरा पोस्टकार्ड फारूक अब्दुल्ला ने भेजा है लक्ष्मीपुर रक्सौल से। कहते हैं कि रेहान फजल साहब की साहिर लुधियानवी पर की गई विवेचना इनको पसंद आई। इन्होंने आग्रह किया है कि इकबाल और मिर्ज़ा गालिब पर भी विवेचना प्रस्तुत की जाए।
ज़रूर, क्यों नहीं, और जैसे ही ऐसा कोई मौका होगा हम आपको ज़रूर मिर्ज़ा गालिब पर और बाकी दूसरी जो तमाम साहित्य की बड़ी ऐसी शख्सियतें हैं उन सब पर विवेचना सुनवाएंगे। इकबाल भी उनमें शामिल है।
और अब मैं ईमेल उठाऊंगी। आशुतोष कुमार पांडे बहुत ही नियमित रूप से लिखते हैं और उन्होंने गुजारिश की कि मेरा पता पूरा पढ़ दें। पांडेपुर पोस्ट निमेज ब्रह्मपुर जिला बक्सर। उम्मीद है पांडे जी आप सुन रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पंकज प्रियदर्शी जी में जो मुझे खास बात लगती है वो ये कि लाइव बात करते हुए भी वो कभी अटक अटक के नहीं बोलते हैं। ये खासियत रूपा झा और राजेश जोशी में भी है। हालांकि इन्होंने शिकायत की है, ये कहते हैं कि बिहार में जो बीबीसी के तीन कर्ता धरता हैं उन्होंने तीसरे चरण वाले चुनाव के बारे में जो रिपोर्टिंग की वो लगभग एक ही भाषा और एक ही जैसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, जो एकदम नीरस उबाऊ और अनमने ढंग से टाल मटोल किया गया काम लगता था। मैं ये कहूंगा कि पंकज यदि नहीं आए होते तो बिहार के तीनों आपके लाडलों के बस की बात नहीं थी।
ये जो लोग हैं, जो लोग बिहार में काम कर रहे हैं, वो अपेक्षाकृत नए हैं और पंकज प्रियदर्शी एक अनुभवी पत्रकार और प्रसारक हैं, तो आप हो सकता है कि दोनों के काम में आप एक अंतर महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह भी है, और हमने भी यही सोचा, इसीलिए पंकज जी को बिहार के रिपोर्टिंग के लिए भेजने का फैसला किया।
जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से इन्होंने ईमेल लिखा है और कहते हैं कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा पर केंद्रित विवेचना सुनने को मिली। ये सब जानकारियां तो उनके बारे में हासिल हुई, मगर जिस प्रश्न का उत्तर पाने की मैं आशा लगाए बैठा था उसका उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता था कि क्या सैम पित्रोदा कांग्रेस के नज़दीक थे या नहीं।
जब सैम पित्रोदा को सूचना तकनीकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो जाहिर है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल इनोवेटर के तौर पर जाने जाते थे। उनको भारत में लाने का और उनसे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कराने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने उनके साथ बहुत नज़दीक से काम किया। लेकिन उसके बाद सैम पित्रोदा लगातार लंबे समय तक जो उनका कार्य का क्षेत्र है यानी इनोवेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इसी पर काम करते रहे हैं, वो भारत में नहीं है। और राजनीतिक रूप से सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए कभी सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जितनी नज़दीकी से काम किया राजीव गांधी के साथ तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो राजीव गांधी के करीबी थे, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर करीबी थे ऐसा कहना ज़रा मुश्किल है।
दीपक पासवान ने चिट्ठी लिखी है और ये कहते हैं कि विलंब से पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन बीबीसी हिंदी का सबसे अच्छा कार्यक्रम फैला उजियारा इन्हें लग रहा है, और कह रहे हैं कि मलिक अंबर के विषय में जानकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा दूसरा अच्छा कार्यक्रम इन्हें लगता है विवेचना और दुनिया जहां। फजल साहब की विवेचना बहुत ही अच्छी लगती है और साथ ही इन्होंने निखिल रंजन को धन्यवाद दिया है दुनिया जहां पेश करने के लिए।
आपकी जो तारीफ है वो हम पहुंचा देंगे इन तीनों लोगों तक।
जी, तो मेरी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियाँ लेने की, जो फिलहाल अब वक्त नहीं है और मैं कोई और चिट्ठी नहीं उठा पाऊँगी।
तो अब हम अपने दर्शकों को अपना पता बताएं और जैसा प्रजापत जी ने कहा था हम उनको नमस्कार राम राम कहें। तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल से चिट्ठी लिखना चाहें तो हमें लिखिए hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त विमान की कंपनी मेट्रोजेट ने कहा है कि हादसे के पीछे कोई बाहरी वजह हो सकती है। एयरलाइंस ने तकनीकी गड़बड़ी या पायलट की गलती की संभावना को खारिज कर दिया है। तुर्की में रविवार को हुए चुनाव की प्रक्रिया की रिपोर्टिंग में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय चुनाव पर्यवेक्षकों ने तुर्की की सरकार की आलोचना की है। नेपाल के बिरगुनी शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस का कहना है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जब हमला कर दिया तो पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। इसराइल की पुलिस ने कहा है कि इसराइल और पश्चिमी तट के बीच चाकू से हमला करने जा रहे एक फलस्तीनी युवक को गोली मार दी गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की शाकिर आलम ने। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।